أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو، میں سید تاج زیدی کا آپ کو پیار بھرا سلام۔ ایشور سے آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے جیون میں سکھی اور پرسن ہوں اور ایشور کی کرپا آپ پر لگاتار بنی رہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام پر آدھارت بات چیت آپ کے سامنے پرستت کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگرام سے مطہرات یا پوتر کرنے والی چیزوں کے ادھیائے کو آپ کے سامنے کھولا تھا، اور جس کے بارے میں کچھ مطہرات یا کچھ پوتر کرنے والی چیزیں جو تھیں، ہم نے ان کے بارے میں آپ کے سامنے وسترت روپ سے بات چیت کی اور ان پرشنوں کا بھی اتر دینے کا پریتن کیا جو پوچھے گئے تھے یا پوچھے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں، جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں سوریہ کے بارے میں بات چیت کی کہ سوریہ کسی چیز کو کیسے پوتر کر سکتا ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، یہ سب ہم نے آپ کے سامنے وسترت روپ سے بیان کیا۔ اور اسی پروگرام میں ہم نے استحالے کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ ہم اپنے اس مطہرات کے بھاگ کو یا پوتر کرنے والی چیزوں کے بھاگ کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی کے آگے جو چیز آتی ہے اور جو چیز کسی چیز کو پوتر کر سکتی ہے اسے انتقال کہا جاتا ہے۔ جب ہم انتقال کا شبد اپنے سماجک جیون میں سنتے ہیں یا اردو بھاشی لوگوں سے اس شبد کو سنتے ہیں تو ہمارا ذہن یا ہمارا دماغ، ہمارا مستشک فوراً ایک طرف کی جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کسی انسان کا مر جانا۔ ہم اپنے جیون میں اس کو انتقال کے شبد سے یہ مانا لیتے ہیں، کسی جیوت انسان کا مر جانا۔ اگر کوئی مر گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ انتقال کر گیا۔ لیکن جب اسی شبد کو فقہ یا احکام کے ادھیائے میں پریوگ کیا جاتا ہے، اس وشے میں پریوگ کیا جاتا ہے، تو اس کے معنی وہ نہیں ہوتے ہیں جو ہم اپنے سماجک جیون میں دیکھتے ہیں۔ انتقال کا ارتھ فقہ میں ایک دوسرا ہوتا ہے۔ فقہ میں جب بھی انتقال کے شبد کو پریوگ کیا جاتا ہے تو اس کا ارتھ ہوتا ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں چلے جانا۔ اگر ہم اس کو اپنے سماجک جیون سے ملانا چاہیں تو اس میں بھی کافی حد تک یہی ارتھ نکلتا ہے۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی جیوت ویکتی انتقال کر گیا، مر گیا، ندھن کر گیا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ ارتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا، لوک سے پرلوک سدھار گیا، یعنی ادھر سے ادھر چلے جانا۔ بہرحال اسی سے ہم یہاں پر میننگ نکالتے ہیں، ارتھ نکالتے ہیں، کہ جب فقہ میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو اس کا ارتھ یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ایک طرف سے دوسری طرف چلے جانا، اور انتقال کسی اپوتر چیز کے پوتر ہونے کا کارن بنتا ہے۔ انتقال کے بھاگ میں سب سے بہترین مثال دی جاتی ہے، ادھارن پیش کیا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے کسی انسان کے شریر کا خون، جس کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ خون اپوتر ہوتا ہے، یا کسی جانور کا خون جو خون جہندہ رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جہندہ اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کے گلے کو یا اس کی رگ کو کاٹا جائے تو خون اچھل کر نکلے۔ اگر خون اچھل کے نکلتا ہے تو اس کو کہا جائے گا خون جہندہ ہے۔ بہرحال اگر کسی انسان کے شریر کا خون، کسی خون جہندہ رکھنے والے جانور کا خون کسی ایسے جانور میں چلا جائے جو خون جہندہ نہیں رکھتا ہے، جیسے مثال، جیسے اگر انسان کے شریر کا خون کسی مچھر میں چلا جاتا ہے और वो खून, वो रक्त मच्छर के शरीर का भाग बन जाता है। तो वो खून जो इंसान की रगों में रहते हुए नजिस था, अब मच्छर की रगों में जाने के बाद वो पवित्र हो जाता है। तो ये है इंतकाल, एक नजिस खून जो इंसान की रगों में नजिस था, मच्छर की रगों में जाने के बाद वो पवित्र हो गया। तो इंतकाल नजिस खून के पवित्र हो जाने का कारण बना। बस अगर इसमें हम देखना चाहें तो ये हो गया कि जो खून पहले अपवित्र था वो पवित्र हो गया। इसी प्रकार जैसे कि अगर किसी जानवर के शरीर का कोई अंग उसको काटा जाए, किसी इंसान के शरीर में लगा दिया जाए, तो अगर जब कटने के बाद वो अंग जो अपवित्र हो गया है इंसान के शरीर से जुड़ने के बाद वो पवित्र हो जाएगा। या जैसे अगर हम ऑपरेशंस में ये बात बहुत अधिक देखते हैं कि ऑपरेशन होता है, एक जगह एक स्थान से किसी चीज़ को निकाल के दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है, एक जगह से गोश्त काट के दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। तो अगर एक जगह से गोश्त काटा गया है और दूसरी जगह पर लगाया जाता है, तो जैसे ही गोश्त कटता है इंसान के शरीर से वैसे ही वो अपवित्र हो जाता है। लेकिन अगर यही गोश्त जो अपवित्र हो गया है इंसान के शरीर के दूसरे अंग में लगा दिया जाए और उसके शरीर का अंग बन जाए तो वो पवित्र हो जाता है। तो ये इंतकाल के बारे में बातचीत थी, जो इंतकाल किसी नजिस खून को या नजिस गोश्त का, इस प्रकार की चीज़ों को पवित्र कर सकता था। इसी इसमें चूँकि बात बहुत आगे नहीं है, लिहाजा हम इसको, इस भाग को जो इंतकाल से संबंधित है, यहीं पर बंद करते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो चीज़ किसी अपवित्र चीज़ को पवित्र करने का कारण बनती है वो इस्लाम। इस्लाम किसी चीज़ को कैसे पवित्र कर सकता है? इस्लाम अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज़ को पवित्र करता है, वो है इंसान को। इंसान की आत्मा को भी पवित्र करता है और इंसान के शरीर को भी पवित्र करता है इस्लाम। इंसान के शरीर को कैसे पवित्र करता है? अगर जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामी शरीयत में काफिर शरीर के अंग को, काफिर के शरीर को अपवित्र माना गया है। अगर कोई इंसान जो काफिर था इस्लाम ले आए, कलमा पढ़ ले, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दे, अगर वो इन दो कलमों को पढ़ लेता है तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा। और शरीर से संबंधित दो चीज़ें हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि उसका पसीना, उसका थूक, उससे निकलने वाली तरी, नमी, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब के सब इस्लाम का कलमा पढ़ते ही सब के सब पवित्र हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ जो आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें शक होता है कि हमारे सामने जो व्यक्ति आया जिसने कलमा पढ़ा है कि वो कलमा वाकई क्या उसने अपने दिल से पढ़ा या दिखावा कर रहा है। तो अगर इसमें हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर हमें शंका हो रही कि जो हमारे सामने कलमा पढ़ रहा है, जो व्यक्ति खड़ा हुआ कलमा पढ़ रहा है, उसने पता नहीं दिल से ये कलमा पढ़ा है या सिर्फ हमको दिखाने के लिए कलमा पढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी हमारे फुकहा यही कहते हैं कि इसके ऊपर भी वो तमाम अहकाम जो एक तहारत के अहकाम होते हैं, पवित्रता के अहकाम होते हैं, उसके ऊपर लगाए जाएंगे। यानी जैसे ही उसने कलमा पढ़ा वो स्वयं पवित्र हो जाएगा, उसका पसीना पवित्र हो जाएगा, उसका थूक पवित्र हो जाएगा और उससे निकलने वाली जो तरी जो पवित्र होती हैं वो पवित्र रहेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो, अगर हमें इस बात का विश्वास हो, अगर हमें इस बात का विश्वास है कि जिसने हमारे सामने कलमा पढ़ा है उसने दिल से नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिखावे में पढ़ा, या किसी लालच में या किसी और कारणवश इसने कलमा पढ़ा है और दिल से ये मुसलमान नहीं हुआ, अगर ये दिल से मुसलमान नहीं हुआ है तो उसके बारे में पवित्रता का आदेश नहीं लगाया जा सकता है और उससे बचना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब कोई इंसान कलमा पढ़ता है, अगर कोई काफिर कलमा पढ़ता है, तो वो इस्लाम जो इंसान के, काफिर इंसान के शरीर को पवित्र कर रहा है, वो इस्लाम जो काफिर इंसान के थूक, उसके पसीने, उसके बदन की नमी को पवित्र कर रहा है, वो इस्लाम उसके कपड़ों को पवित्र नहीं करेगा। अगर इसी प्रकार अगर कोई चीज़ अलग से उसके नजिस लगी हुई है तो उस चीज़ को पवित्र नहीं करेगा, बल्कि वही चीज़ें पवित्र करेंगी जो इंसान से खुद संबंधित थी, जैसे उसका शरीर, उसका थूक और इन सब चीज़ों की। अगर कोई और चीज़, कोई और अपवित्रता इस प्रकार उससे लगी हुई है तो उसको अलग से पवित्र किया जाना आवश्यक है, इस्लाम के माध्यम से वो चीज़ पवित्र नहीं होगी। तो ये वो चीज़ थी जो इस्लाम किसी इंसान के अंदर पवित्र कर सकता है और उसकी जो शर्तें थी हमने आपके सामने बयान कर दी। उसी के बाद जो चीज़ इसी मुताहरात या पवित्र करने वाली चीज़ों के भाग में आती है, उसे एक चीज़ कहते हैं तबीयत। यहाँ पर तबीयत का अर्थ वो तबीयत नहीं कि जब हम आपसे कि कोई इंसान किसी से पूछता है आपकी तबीयत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है ना, यहाँ पर तबीयत से हमारा तात्पर्य स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि तबीयत कहते हैं किसी चीज़ के कारण किसी दूसरी चीज़ का कोई अलग हुक्म ले लेना, इसे कहते हैं तबीयत। जब इस्लामी शरीयत में या फिक के भाग में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ ये होता है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कोई चीज़ किसी तबीयत के कारण से जो चीज़ पहले अपवित्र थी वो पवित्र हो सकती है। उसमें हम आपके सामने उदाहरण पेश करते हैं ताकि आपके सामने ये स्थिति अच्छी प्रकार ठीक से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। जैसे कि हम अपने इस जीवन में और इस प्रकार जो अधिकतर जिनको शंका की बीमारी होती है और जो बहुत ज़्यादा शक करते हैं उनके साथ ये बहुत पेश आता है। अगर कोई चीज़ जो अपवित्र थी अगर हम पवित्र कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम नजिस वस्त्र को नजिस कपड़े को पवित्र कर रहे हैं, तो अगर पानी हमारे हाथ से होता हुआ कपड़े तक पहुंच रहा है, हमने नल के नीचे लगा रखा है और पवित्र कर रहे हैं, तो जैसे ही वो चीज़ वो कपड़ा वो बर्तन या इसी प्रकार की कोई दूसरी चीज़ जैसे ही पवित्र होगी तो उसी की तबीयत में उसी के साथ ही साथ वो हाथ भी हमारा जो उसके साथ लगा हुआ था वो भी पवित्र हो जाएगा। अब हाथ को अलग से पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हाथ उसी पानी के साथ इसको कहा जाएगा पवित्र है, और इसी के बारे में हमारे फुकहा भी यही कहते हैं कि ये चीज़ ये हाथ भी पवित्र माना जाएगा। और इसी में जैसे कि जो चीज़ होती है, जैसे कि जब गुस्ल दिया जाता है, ये चीज़ हम आप अपने समाज में भी देखते हैं कि हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि मुर्दे को 3 गुस्ले दिए जाते हैं, तख्त पे या किसी चारपाई पे इस प्रकार की चीज़ों पर लेटा कर जब गुस्ल दिया जाता है, तो इंसान का जो शरीर है जैसे ही कोई इंसान मरता है तो मरने के बाद उसका शरीर नजिस हो जाया करता है। अब अगर उससे कोई तरी मिलती है तो जैसा कि हमने अपने पिछले भाग में भी बताया था कि जैसे ही कोई तरी उससे टच होगी वो चीज़ भी नजिस हो जाएगी। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जब हम किसी मृत शरीर को किसी इंसान को मरे हुए इंसान को एक तख्त के ऊपर लिटाते हैं एक चारपाई पर लिटाते हैं तो उससे निकली हुई तरी से वो चारपाई वो तख्त या वो तख्ता या इसी प्रकार की दूसरी चीज़ें भी नजिस हो जाया करती हैं जिसको पवित्र करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर तबीयत जो चीज़ करती है वो ये है कि अगर किसी तख्त के ऊपर लिटाकर किसी मृत व्यक्ति को 3 गुस्ल दिए जाएं, जैसा कि इस्लामी शरीयत ने कहा है कि एक मुर्दे मुसलमान को 3 गुस्ल दिए जाना आवश्यक है, अगर किसी मुसलमान को 3 गुस्ल इस किसी तख्त पर लिटाकर किसी चारपाई पर लिटाकर दिए जा रहे हैं तो जैसे ही उसका गुस्ल तीसरा गुस्ल तमाम होगा तो वो तख्त जिसके ऊपर लेटा था या उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब के सब उसका गुस्ल तमाम होते ही पवित्र हो जाएंगी। तो ये वो चीज़ थी जो तबीयत के ज़रिए से पाक होती थी। जैसे कि इसमें एक और उदाहरण पेश किया जाता है, मिसाल दी जाती है, वो ये है कि अगर किसी हमारे किसी बर्तन में शराब रखी हुई है तो शराब रखा हुआ बर्तन स्वयं अपवित्र होता है। अब अगर उस शराब रखे हुए बर्तन को किसी गैस के ऊपर किसी आग के ऊपर रख दिया जाए, उसको उबाला जाए, इतना उबाला जाए कि वो सिरके में बदल जाए, तो जैसे ही वो चीज़ सिरके में बदलेगी तो वो बर्तन अंदरूनी भाग, बाहर के भाग की बात नहीं हो रही, बर्तन का अंदरूनी भाग जहाँ जहाँ तक शराब लगी हुई थी या उसके अंदर जो चम्मच या जो कढ़ाई जो चम्मच या जो इस प्रकार की चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सब के सब पवित्र हो जाएंगी, लेकिन बाहर का जो भाग है वो पवित्र नहीं होगा, उसको पवित्र करने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं तबीयत, यानी एक चीज़ जो पवित्र हो रही है उसके माध्यम से दूसरी चीज़ भी पवित्र हो रही है। जैसे कि नजिस वस्त्र को पाक करने के माध्यम से हमारा हाथ पवित्र हो रहा है, सिरके के माध्यम से शराब से नजिस हुआ बर्तन पवित्र हो रहा है, गुस्ल देने के माध्यम से हमारा वो नजिस तख्त जो मुर्दे के वजह से नजिस हुआ था वो पवित्र हो रहा है, इसे कहते हैं तबीयत। और ये चीज़ इन चीज़ों को पवित्र करने का कारण बनती है। इसी मुताहरात के अध्याय में 2-3 बातें और बचती हैं जो इसको हम आपके सामने किसी और प्रोग्राम में प्रस्तुत करेंगे। तो हमने आपको सारांश पे अगर बता दिया है, सारांश इस प्रोग्राम का सारांश ये हुआ, हमने अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो बात की वो इस्लाम की बात की कि इस्लाम किसी मुसलमान किसी काफिर व्यक्ति को पवित्र कर सकता है, उसके शरीर को पवित्र करेगा कलमा पढ़ते ही, उसके थूक को पवित्र करेगा, उसके शरीर से संबंधित जो नमियां हैं उसको पवित्र करेगा। और तबीयत, जिसके बारे में हमने बताया कि तबीयत किसी एक चीज़ के पवित्र होने के माध्यम से दूसरी चीज़ पवित्र होती है, जिसके हमने आपके सामने कुछ उदाहरण पेश किए। इसमें हम इंशाल्लाह आपके सामने और भी प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।